ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक हाथ की ताली से। हम भक्ति कर रहे हैं ना अभी। दीदी बाबा के बहुत बहुत विशेष अनन्य रत्न हैं। अपनी डबल लाइट स्थिति से सभी को लाइट बना देते हैं। हम कहेंगे आप फ्लाइंग एंजल हैं। मैं समझती हूँ कि पांचों महाद्वीपों में अनेकों बार, हाँ मुझे पूरी गिनती याद नहीं है, पर अनेकों बार आपने विश्व का चक्र लगाया है और पूरे विश्व कल्याणकारी बाबा के जो नाम हैं वो आपने सिद्ध किया है। 1962 में आप ज्ञान में आए साकार बाबा की टाइम। उस समय आप मेडिकल प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद भी 10 साल तक आप मेडिकल प्रैक्टिस करते रहे ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट, और 1972 में पूरी तरह से आपने ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया और सबसे पहले विदेश सेवा में लंदन में आप सेवा में रहे, फिर अफ्रीका में, मॉरिशस में, और फिर 1978 से ऑस्ट्रेलिया में आप सेवाएं देते रहे। तो अभी वर्तमान में भी आप एशिया पैसिफिक के 15 से भी अधिक देशों के जितने भी सेंटर्स हैं उनके आप डायरेक्टर हैं, ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं, अपनी आईटी विंग है उसके आप चेयरपर्सन हैं, और मधुबन की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी आप सक्रिय हैं, यानी मधुबन का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी आपकी मुख्य भूमिका है, और विदेश के जो भी डिसीजंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं उसमें भी आप शामिल रहते हैं। बाबा आपको साकार मूल्यों में भी याद करते रहे हैं। निर्मल आश्रम बाबा विशेष दीदी को कहते थे। इस जीवन में रहते हुए, व्यक्त जीवन में हम कहेंगे रहते हुए, अव्यक्त स्थिति को अनुभव करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। तो अभी आपका विषय है अव्यक्त अशरीरी स्थिति, उसको सहज कैसे बनाए।
ओम शांति। हमारा ज्ञान विचित्र है, नया भी है। बाबा हमें कहते हैं जो इन स्थूल आंखों से देखने में आता है उसको मत देखो, और जो नहीं देखने में आता है उसको याद करो। ये थोड़ा मुश्किल है ना। शरीर को देखते हैं, शरीरधारियों को देखते हैं, उसको नहीं देखना है। भौतिक साधनों को देखते हैं, उनको नहीं देखना है। और आत्मा परमात्मा जो देखने में नहीं आते हैं उनको याद करना है, उस स्मृति में रहना है। तो शुरू शुरू में तो जो भाई बहने यज्ञ में समर्पित हो गए उन्हों के लिए तो सहज था और कोई धंधा नहीं। ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं, और जो भी कर्म योग का अपनी ड्यूटी थी वही बजाना। तो कोई भी लौकिक मित्र संबंधियों के संपर्क में नहीं आते थे, और अभी तो आप जैसे हैं ग्रस्त में रहना है, नौकरी धंधा करना है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, ईश्वरीय सेवा करनी है और अपना पुरुषार्थ करना है। इसलिए कई बार गृहस्थी कहते हैं हम सेंटर पर रहते थे या मधुबन में रहते हैं तो सहज होता था, पर ये एक्टिविटी में रहने से मुश्किल है हमारा पुरुषार्थ। ऐसे होता है ना। और सेंटर पर रहने वालों को भी ऐसे होगा। क्यों? कि सेंटर की एक्टिविटी कोई कम नहीं है। आजकल सेवा का विस्तार बहुत बढ़ गया है। अनेक स्टूडेंट है, अनेक क्लास है, अनेक गीता पाठशालाएं हैं, तो सेवा का विस्तार भी बढ़ गया है। तो वो भी कहेंगे कि क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिलती, अमृत वेले भी थके थके होते हैं, इतना योग नहीं लगता। परंतु बाबा कहते हैं कुछ भी हो, बहानेबाजी ना हो। अपना पुरुषार्थ जरूर हो। बाबा ने तो हमें टाइम टेबल दे दिया, 8 घंटा नौकरी करो, 8 घंटा अपने शरीर को दो, 8 घंटा बाबा की सेवा में दो, या अपने स्व पुरुषार्थ में, योग में, सेवा में, सब में दो। परंतु यहां एक बात ये भी है कि जो नौकरी करने वाले हैं, 8 घंटा तो नौकरी होती है, पर नौकरी पर आने जाने में भी घंटा 2 घंटा लग जाता है। डिपेंड्स, जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा टाइम लगता है। मुंबई जैसे शहर में जहां हम रहती थी, कम से कम 1.5 घंटा ट्रेन में लगता, मतलब ट्रेन में घर से जाओ, ट्रेन लौट, वहां पहुंचो, वहां से सेंटर पर पहुंचो, 1.5 घंटा लग जाता था। और आजकल तो यदि कार में जाओ तो 1.5 घंटे के बजाय 3 घंटा लग जाएगा ट्रैफिक। तो इसलिए जैसे समय बीतता जाता है, लाइफ डिफिकल्ट भी होती जाती है, तो साथ साथ रियलाइजेशन भी होता है कि समय थोड़ा है, पुरुषार्थ ज्यादा करना है, एवर रेडी रहना है। तो सबसे पहला लेसन, वैसे तो सहज है, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा रथ है या घर है, तो ये समझना तो सहज हो गया। छोटा बच्चा भी कहेगा, उनको पूछो आप कौन हो, कहेगा मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर का नाम फलाना है। तो समझना सहज है, परंतु स्मृति स्वरूप रहना ये पुरुषार्थ है। आप लोग भट्टी में हैं, 3-4 दिन यहां रहेंगे, तो यही पुरुषार्थ रहे, आत्मा स्वरूप में रहना, स्मृति में रहना। हरेक को देखो, ये आत्मा है। तो आज भी मुरली में बाबा ने बताया कि शुरू में क्या प्रैक्टिस करते थे, 1-2 को नाम से नहीं बुलाते थे, हे निज आत्मा बोलते भी थे, पत्रों में भी जब लिखते थे तो वही लिखते थे। तो यहां बोलने की तो दरकार नहीं है, हम मुश्किल हो जाता है ना, आत्मा आत्मा करके बोलो तो किस आत्मा को बुलाते हैं मालूम नहीं पड़े। परंतु वो स्मृति रहे, किसी को भी देखो ये स्मृति रखो ये आत्मा है। और विशेष जब घरों में रहते हो तो लौकिक संबंध याद रहता है, नौकरी पर जाते हैं तो भी लौकिक पोजीशन और संबंध याद रहता है, उस समय ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि हम पति को पति के रूप से ना देखें, आत्मा बाबा का बच्चा, बच्चे को बच्चे के रूप से ना देखें, आत्मा बाबा का बच्चा मेरा भाई। दुनिया वाले तो हमारे पर हंसी उड़ाते हैं, ये तो पति पत्नी को भाई बहन मनाते हैं, परंतु बाबा हमें ये पाठ पक्का कराते हैं कि भाई बहन या भाई भाई की दृष्टि हो, उसी से क्या होंगी, अपेक्षा नहीं रहेंगी। नहीं तो अपेक्षा रहती है, पति समझेगा पत्नी की ये ड्यूटी है खाना पकाना, गरम गरम खाना देना, जब भी काम पर आए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएं, पत्नी थाली लेवे, गरम गरम चपाती खिलावे, गरम गरम खाना खिलावे, ये अपेक्षा रहती है। और पत्नी की अपेक्षा रहेंगी पति कमा कर ले आवे, बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखे, शॉपिंग करके आवे आदि आदि। मतलब एक दो का सहयोग देना है, आज भी बाबा ने कहा सहयोग दो, साथ दो, पर सहारा नहीं बनो, न सहारा दो न सहारा बनो, सहारे दाता बन के सहारा मत दो, सहारा दो जरूर परंतु सहारे दाता बाबा है, ये याद करके एक दो को सहयोग दो। तो ये अशरीरी बनने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलते फिरते मैं आत्मा हूं ये याद रहे, और अव्यक्त होके रहे, क्योंकि लक्ष्य है हमको फरिश्ता बनना। तो शरीर में रहते हुए, शरीर से कार्य करते हुए, शरीर से न्यारा, देहभान से न्यारा, देह में बिल्कुल मोह ना हो। क्यों? यदि मोह की रग होंगी किसी में भी, चाहे अपने शरीर में, चाहे परिवार में, चाहे वस्तु वैभव में, तो क्या होगा, बुद्धि वहां खींचेंगी और बाबा की याद नहीं रहेंगी। पर जितना आत्मभान में रहेंगे, बिंदु होकर रहेंगे, तो बिंदु बाप की याद सहज होंगी, हम लाइट रहेंगे। शरीर भान में होने से क्या है, शरीर भारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहेंगे कि मैं इस बात की जिम्मेवार हूं। तो जिम्मेवारी का बोझा हम उठा लेते हैं तो भारी हो जाते हैं। पर जब अशरीरी होकर निमित्त होकर काम करेंगे तो लाइट रहेंगे, और लाइट रहने से जल्दी उठ सकेंगे। तो शुरू में यज्ञ में जब रहते थे तो वो लोग क्या करते थे, अलग अलग ग्रुप बनाया था उन्होंने, मनोहर पार्टी, डिवाइन ग्रुप आदि आदि अपना ग्रुप बनाया था, और ग्रुप बैठ बैठ कर तपस्या करते थे। तो उस समय तो 300 ही थे, अभी तो 9-10 लाख हो गए हैं, इसलिए आपको 200-200 के ग्रुप में बुलाते हैं। तो ऐसे शुरू शुरू में ये सहज था ना, और कुछ था नहीं ना ज्ञान योग के सिवाय। तो ग्रुप ग्रुप बनाकर बैठकर तपस्या करते थे और एक दो से रेस करते थे, समझते थे हमारा ग्रुप पावरफुल हो जाए, धारणा हमारी अच्छी हो जाए, तो इसलिए ये योग भट्टी अच्छी है और आप लोग भाग्यशाली हो जो यहां भट्टी करने का आपको चांस मिला। आप समय निकाल सके और आपको चांस भी मिला, क्योंकि मुझे याद है एक साल पहले मुन्नी बहन कहती थी मेरे पास 50 ग्रुप का वेटिंग लिस्ट है, तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, तो इसलिए बहुत लकी हो। और पांडव भवन जहां बाबा की ओरिजिनल भूमि है, जहां सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है, हमारे सब कॉम्प्लेक्स में पांडव भवन में सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है। चार धाम की यात्रा करने सब लोग आते हैं, चाहे नीचे भी शिविर करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, विंग्स प्रोग्राम करेंगे, समझेंगे, कम से कम एक दिन पांडव भवन का चक्कर लगाएं, चार धाम की यात्रा करके आए। तो क्या है कि इस वातावरण का और चांस का आपको पूरा लाभ लेना है, और जितना हो सके मौन में रहो, और मोबाइल फोन तो आप सभी ने बंद कर लिया होगा ना, रात को चलाते हैं या नहीं, क्योंकि जितना दुनियावी लोगों के साथ कम संपर्क रहेगा ना अच्छा रहेगा। तो रात को अपना चार्ट देखना है और दूसरे दिन के लिए क्या टेंशन रखना है वो ध्यान में रखना है। तो शुरू शुरू में बाबा क्या करते थे, खुद योग कराते थे, और यहां पर पांडव भवन में पहाड़ी पर खड़े होकर योग कराते थे। नेचुरली है, जब बाबा योग कराता था और इस वातावरण में जो रहते थे अशरीर हो सहज हो जाता। तो अभी आपके लिए तो पावरफुल एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो ये अभ्यास करना है चलते फिरते, शरीर भान से परे हो जाना, और किसी को याद नहीं करना। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो अभी हमें बहाना नहीं बताना है, क्यों? बाबा के बच्चे हैं, बाबा है सर्वशक्तिमान और हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा के सगे बच्चे, ठीक है ना? सगे बच्चे हैं ना सब, तो सगे बच्चों को बाबा की मदद मिलती है। देखो दुनिया वाले आज के, देखो कलयुगी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कितना बिजी रहते हैं ना। मैं समझती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर सवेरे 6 बजे से ऑफिस में पहुंचते हैं दिल्ली में, तो लौकिक लोग भी इतनी जिम्मेवारी बजाते हैं जो सवेरे 6 बजे से रात को 8-9 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। तो हमारे पास तो बाबा की विशेष मदद है, इसलिए अपना बहाना ना हो, स्व पुरुषार्थ में अपना पूरा अटेंशन रहे। अपना घड़ी घड़ी चेकिंग करनी है, हम आत्मभान में है, बाबा की याद है, दूसरों को न याद कराना पड़े। न शरीरों में तो एक बारी ऐसे भी होता था कि एक दो को याद दिलाते थे, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। अभी हमारी याद नेचुरल होनी चाहिए और लक्ष्य है, क्योंकि मालूम है समय थोड़ा है, हमें संपन्न बनना है, एवर रेडी रहना है, क्योंकि लास्ट में हम अपने आप को याद दिलाए मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं चल नहीं सकेगा। इसलिए पहले से प्रैक्टिस करनी है। तो जितना हमारा दृढ़ संकल्प हो इतनी सफलता ज्यादा होंगी, जितना हम ढीले रहेंगे कि क्या करें बहुत बिजी है, ये है फलाना है सेवा है या घर में ये गड़बड़ है, बच्चे हैं उन्हों को पढ़ाना है ये करना है, नहीं करेंगे देखेंगे नहीं। बाबा कहते हैं अभी घेंगे की भाषा बंद करो, करके दिखाएंगे। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब कोशिश करेंगे नहीं करना ही है। तो हमारे में खुद में निश्चय हो। कई बार क्या है कहते बाबा में तो हमें निश्चय है परंतु हम कर सके या ना कर सके, हमारी परिस्थिति ऐसी है तो ये ना हो। अपने में भी निश्चय रखो कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। जो अपने पर संशय करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, जो कहेंगे कोशिश करेंगे अपने में संशय है तो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ा मारते हैं। इसलिए जरा भी संशय नहीं रखना है, मुझे करना ही है, करके ही छोड़ूंगी। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है वो तो करके ही दिखाते हैं। जो गोड़ेश्वर प्यादे है वो कोशिश करते हैं। तो ऐसे नहीं कि हमको हम गृहस्थी है ये नहीं समझो अभी। हम सभी गॉडली स्टूडेंट है, ये बुद्धि में रहे। ये बाबा के बच्चे, बाबा के स्टूडेंट, बाबा हमारा सतगुरु है, सब कुछ है। तो अपना पाठ बजाते हुए हमें ये सदा पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ। तो इसलिए जिम्मेवारी बजाते हुए अपने आप को निमित्त समझना है। जिम्मेवारी भी बजानी है, ऐसे भी नहीं कि सारा दिन हम योग में बैठे रहें और सारा दिन मौन में रहें। तो घर में जो भी काम काज है, अपनी जिम्मेवारी है, नौकरी धंधा है, वो भी करना है, पर कर्म योग्य होके रहना है। और अटेंशन की बात है, मेन बात ये है, इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते हमें पूरा अपने पर अटेंशन एंड चेकिंग करनी पड़ती है। क्योंकि जितना चेकिंग करेंगे ना, तो हम रियलाइज करेंगे कि देवहान में तो नहीं आ जाते हैं। क्योंकि देवहान में आने के हमारे आधा कल्प के संस्कार हैं। अभी देही अभिमानी बनना है, तो इसलिए मेहनत जरूर है, पर अटेंशन रखने से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हर पल अपने को चेक करना है, सिर्फ रात को नहीं, या सिर्फ एक मास के बाद नहीं, या एक हफ्ते के बाद नहीं, पर हर पल अपने आप को चेक करते रहना है कि मैं आत्मभान में हूं या देवभान। जैसे देवभान में रहने का संस्कार नेचुरल है, ऐसे अभी आत्मभान में रहने का भी नेचुरल संस्कार बनाना पड़े। वो हमारी नेचर बन जाए। तो जब आत्मभान में होंगे तो हमारे असली स्वरूप शांत, प्रेम, दया, आनंद, उसका अनुभव होगा। अशांति आई, कोई भी विकार आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, वैर आया, नेगेटिव भाव आया, तो समझ लो देवभान। और बाबा कहते हैं, देह अभिमान हमारा सबसे बड़े से बड़ा शत्रु, सब विकारों की जड़ वो है। इसलिए अपना अटेंशन घड़ी घड़ी खिंचवाना पड़ता है कि हम देहभान में ना आए, देही अभिमानी होकर रहें। और आत्मा बिंदी हल्की, तो हल्की आत्मा क्या कर सकेंगी, उड़ सकेंगी। जो शरीर भान में है तो शरीर तो भारी है, तो भारी शरीर उड़ नहीं सकेगा। तो हमारी अंतिम अवस्था है अव्यक्त फरिश्ता। तो अव्यक्त अशरीरी या लाइट स्वरूप, तो कर्म करते करते देह भूल जाए और अपने आप को लाइट के कार्म में देखो, लाइट का शरीर है। जैसे सूक्ष्म वतन में हमारा लाइट का शरीर है, एक्टिविटी होती है, परंतु सूक्ष्म वतन में क्या है, आवाज नहीं। तो इसी रीत से एक्टिविटी होती रहे और जितना हो सके धीरे आवाज से बातचीत करें, और जैसे भी फ्री हो जाएं यहां से साकार दुनिया से ऊपर चले जाएं। जैसे घर में क्या होता है, फ्री होते हैं तो बेडरूम में चले जाते हैं, आराम करते हैं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन आपका बेडरूम है, बीच बीच में वहां चले जाओ। ये संसार हमारी ऑफिस है, परमधाम हमारा घर है। तो ऑफिस से फ्री होते हैं घर चले जाते हैं, ऑफिस में तो सदैव बैठे नहीं रहते हैं। इसी रीत से अभ्यास करना है, बीच बीच में सूक्ष्म वतन में शेयर करो, परमधाम में पहुंच जाओ और पांच स्वरूप की भी प्रैक्टिस करना। यहां बैठे बैठे साकारी से आकारी से निराकारी और पांच स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य, पुजारी, ब्राह्मण और फिर अव्यक्त। तो बीच बीच में इसका अभ्यास करते रहना, क्योंकि समय मिला है उसका पूरा पूरा उपयोग करना है। खाना पीना सोना बातचीत करना वो तो घर में करते रहते हैं, यहां ये हो तो विशेष कुछ अनुभव करके जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनना है। जितना अनुभवी मूर्त बनेंगे औरों को बना सकेंगे, फिर थोड़े शब्द में औरों को अनुभव करा सकेंगे। आज भी बाबा ने कहा ना कि उन्होंने बहुत सुना है, बोलने के साथ साथ स्वरूप होकर उनको स्वरूप बनाना है, अनुभव कराना है। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी होंगी तो वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। उस अनुभव की अथॉरिटी वाले को माया कोई भी हालत में हिला नहीं सकती है, क्योंकि अनुभव किया है। नहीं तो लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में कहां फंस गए, रोज सफेद कपड़े पहनकर चल पड़ते हैं, घर का ध्यान नहीं रखते, बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखते, उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, और बस बाबा बाबा करते रहते हैं तो लोग क्या है, हिलाने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों में क्या है, देखो साईं बाबा ने हमको इतना अच्छा बना दिया, हमारी बीमारी कितनी थी साईं बाबा ने अच्छा कर दिया, तुम्हारा बाबा कर सकता है क्या? साईं बाबा में चलो, इधर चलो उधर चलो, क्योंकि आजकल तो बहुत गुरु बन पड़े हैं, जंतर मंतर करने वाले कई बड़े हैं जो जादूगरी करके सबको चकित कर देते हैं। और यहाँ तो क्या है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, कई बातें छोड़नी पड़ती हैं, समाज की रुचि रस्म प्रमाण नहीं चलना है, फंक्शन में कम जाते हैं, समाज में आड़ोस पड़ोसी से कम मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं, तो क्या है, समाज वाले परिवार वाले समझते हैं, हम उनको समझते हैं अच्युत है शुद्र है, वो समझते हैं ये पागल है। हाँ, हम कहेंगे हाँ हम तो भगवान के पीछे पागल है, मीरा भी तो भगवान के पीछे पागल थी, आज सुन की सब महिमा गाते हैं, और तुम हो माया के पीछे पागल, तो माया तुमको फंसा देंगी। मतलब हम समझते हैं कि बाबा हमें क्या देते हैं, सत्युग में तो देंगे ही स्वर्ग का वर्षा, परंतु यहां भी तो सुख शांति आनंद मिलता है ना, भल हमारे पास बहुत धन दौलत नहीं होगा, परंतु जो सुख शांति आनंद प्यार हमें मिला है वो तो आज धन दौलत खरीद नहीं सकता ना, हाँ? और कुछ सब कुछ आप खरीद सकते हो, मोटर गाड़ी कपड़े गहने पैसे से सब खरीद सकते हो, परंतु धन से सुख शांति आनंद प्रेम आदि तो नहीं मिलता। तो बाबा ने हमें 21 जन्मों का ये वर्षा दिया है, ये बुद्धि में है, तभी तो हमने ये त्याग किया है, तभी तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुनिया वाले क्या है, डरते हैं ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा, रोज सवेरे सवेरे 4 बजे में उठो और भाग दौड़ करो, और न पार्टियों में जाना न फिल्म में जाना। तो दुनिया वाले तो डरते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों में इतनी हिम्मत है जो ये सब कुछ छोड़ा है। तो ये हिम्मत जब हम रखते हैं, बाबा की मदद जरूर रहती है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे ज्ञान में कितनी भी परीक्षाएं आए विघ्न आए, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, पुरुषार्थ करके थक नहीं जाना है। कई बार कई बच्चे थक जाते हैं, 5 साल से मेहनत करता हूं अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता हूँ या अभी तक योग में इतनी प्राप्ति नहीं होती है, मन एकाग्र नहीं रहता है आदि आदि, और फिर अपने में डाउट लाते हैं, पता नहीं मैं तो पवित्र बन सकूंगा या नहीं। परंतु बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं गारंटी करता हूं तुमको मैं देवता जरूर बनाऊंगा, पवित्र जरूर बनाऊंगा। तो इसलिए पुरुषार्थ करते रहना है, और वो भी बाबा समय की सावधानी बहुत समय से देते हैं कि समय थोड़ा है, अचानक कुछ भी हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। क्योंकि आत्मस्मृति में रहना ये फाउंडेशन है, उससे हमारा योग लगेगा, उससे हमको पवित्र रहने की शक्ति मिलेगी, धारणा कर सकेंगे, और जितना हम पवित्र रहेंगे धारणा करेंगे सेवा ऑटोमेटिक होंगी। हमारे बोल चाल चलन से चेहरे से सेवा हो सकती है, चाहे हम भाषण करें ना करें, परंतु हमारी चलन सेवा करती है। क्योंकि जब हमने शुरुआत की योग सिखाने की विदेश में, तो शुरू शुरू में सब जवान ज्ञान में आए, 20 22 23 साल के जवान थे और हिप्पी थे, 70s में हिप्पी थे, घूमते रहते थे, भगवान को ढूंढते रहते थे, सुख शांति ढूंढते रहते थे, क्योंकि भल उनके पास मटेरियल वेल्थ बहुत थी, सब कुछ था पर शांति नहीं थी। तो इसलिए देश विदेश घूमते थे कि हमें कुछ सुख मिले, शांति मिले। जब ज्ञान में आए तो बाबा से सब अनुभव किया तो फौरन छोड़ दिया, जो इतने लंबे लंबे बाल थे पहले बाल कटवाए, कपड़े पहले हिप्पी माना फटे टूटे पहनते थे, कभी स्नान किया नहीं किया, कभी कपड़े धोए ना धोए, कुछ नहीं, जब मन में आया सोया, जब मन में आया खाया, जब मन में आया उठा, कोई नियम नहीं। तो जब वापस घर लौटे सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए, कुर्ता पैजामा, बाल कटवा लिए, और रोज सवेरे 4 बजे उठना शुरू कर दिया, शराब सिगरेट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब छूट गए, पार्टियों में जाना छोड़ दिया। तो पहले तो उनके माँ बाप को चिंता हो गई कि ये क्या, हमारे बच्चों को क्या हुआ, क्रिश्चियन धर्म से कन्वर्ट होकर हिंदू बन गए। परंतु देखा कि उसके जो दूसरे बच्चे ज्ञान में नहीं थे, वो शराब पीकर कार का एक्सीडेंट करके आते थे, और फिर केस हो जाता था। तो नेचुरली है, माँ बाप को पैसा भरना पड़ता था, एक्सीडेंट तो कार सब ठीक करनी पड़ती थी, पुलिस में जाना पड़ता था। तो कहा कि इन बच्चों से तो ये बच्चा अच्छा है जो ज्ञान में है, और एक भाई तो है ज्ञान में आया तो शांत था, परंतु थोड़ा दिन क्लास में नहीं गया तो थोड़ा गुस्सा करने लगा घर में। माँ बाप कहते हैं तुम क्यों नहीं जाता है क्लास में, क्लास में जाओ ना तो शांत तो कम से कम रहता है। तो इसी रीत से हम देखते हैं कईयों के घर वाले अपने यहाँ भारत में भी कईयों के घर वाले कहते हैं इसका परिवर्तन देखकर हमने कहा तुम खुश हो जाओ, तुम शांत रहती हो जाओ भले। तो परिवर्तन देखकर घर वाले भी प्रभावित होते हैं और चाहे ज्ञान लेवे ना लेवे कम से कम रिस्पेक्ट से देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियों में जाकर ओम शांति करते शांत बन गए हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, हठ नहीं करते हैं। नहीं तो क्या है कई माताएं, क्योंकि माताएं ज्यादा ज्ञान में हैं, कई माताएं घर में हट करती है हमको ये गहना चाहिए ये कपड़ा चाहिए, यहाँ घूमना है वहां घूमना है, यहाँ खाना खाने जाना है वहां खाना खाने जाना है, खर्चा कराती है। अभी वो सब छूट गया तो इसलिए घर वाले भी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हम जितना भी बैलेंस रखेंगे, ये ध्यान में रखना है कि गृहस्थ व्यवहार में रखे बैलेंस जरूर रखना है, नहीं तो क्या होता है एक तरफ हो जाते हैं कई लोग। कई है एकदम सवेरे ज्ञान में क्लास में, शाम को क्लास में, सेवा में ऐसे भाग दौड़ करते हैं तो घर वाले नाराज हो जाते हैं। तो हमारे पास फिलीपींस में एक भाई था, छोटी उम्र में शादी की थी, मैं समझती 20-22 वर्ष में शादी कर ली थी और बच्चा भी हुआ और ज्ञान में था। तो ज्ञान में नया नया होता है तो कितना उमंग होता है ना, तो भाई सवेरे क्लास में आवे, शाम को भी क्लास में आवे, वीकेंड में भी सेवा होती है सेंटरों पर तो वीकेंड में भी मेजॉरिटी टाइम सेंटर पर लगाता था। तो उसकी बीबी आई हमारे साथ झगड़ा करने, ये क्या हाँ बच्चे को भी देखता नहीं, घुमाने नहीं ले जाता है, वीकेंड में भी यहीं आता है सवेरे शाम यहाँ। तो फिर मैंने भाई को समझाया कि भाई सवेरे भले आओ क्लास में, कम से कम शाम को घर में रहो, कम से कम वीकेंड में इनको घुमाने ले जाओ, इनको इच्छा है रेस्टोरेंट में खाने के ले जाओ, तुम नहीं खाना ले तो जाओ उन्हों को, पार्क में ले जाओ, बीच पर ले जाओ, घुमाने ले जाओ। फिर माता शांत हो गए और अभी संपर्क में है, आती जाती है, मैं जाती हूँ तो मिलती है जरूर। तो इसी से क्या है कि आप बैलेंस रखेंगे ना, माताएं बच्चों का ध्यान रखे, टाइम पर खाना पीना देवे, अच्छा खाना पकावे, क्योंकि विदेश में तो क्या है कि बच्चों को नॉनवेज पकाती नहीं, माताएं कहेंगी हम तो नहीं पकाएंगे, तो बच्चे भी कई बार तंग करते थे। परंतु एक माता अपना अनुभव सुनाती है कि मैंने अच्छा अच्छा खाना पकाना सीख लिया, और ब्राह्मण का खाना ऐसे होता है ना कि उसमें अदरक मिर्ची टमाटर आदि आदि डालने से स्वादिष्ट बन जाता है, तो नेचुरली है कि बच्चे अभी मीट की मांग नहीं करते हैं और एक माता ने तो बताया कि वहां स्कूल में पिक्चर बताया था कि स्लॉटर हाउस कत्लखाना कहते हैं ना इसको कत्लखाना कहते हैं ना जहां उनका खून किया जाता है और कितना वो लोग रोते हैं गाय को बछड़े से दूर कर देते हैं और रोते हैं मतलब उनको भी फील तो होता है ना कि हमको मार डालते हैं तो कहा कि उनको बच्चों को दिखाया तो बड़ा बच्चा कहता है कल से मैं मीट नहीं खाऊंगा दूसरा भी छोटा भी कहे मैं भी मीट नहीं खाऊंगा माँ बाप कहे हम भी क्यों खाएं तो ऐसे छोड़ देते हैं कोई बच्चों को देखकर छोड़ते हैं कोई माँ बाप को देखकर छोड़ते हैं और इससे क्या है कि जितना हम प्यार से सोच समझ से उनको समझा कर चलाते हैं ना तो क्या होता है कि वो लोग भी घर में खुश रहते हैं प्यार से क्योंकि नियम तो हमको पालन करना है तो वो पालन करने में भी हम जितना उनको प्यार से समझाएंगे करेंगे तो वो मानेंगे तो इसलिए से यहां भी पुरुषार्थ करो और घर में भी जाकर अपना नियम रखना है अपना पुरुषार्थ चालू रखना है अपना इसी रीत से अपना टाइम टेबल बनाना है कि रात को 10:30 लेटेस्ट 10:30 तक सो जाओ ताकि 4 बजे उठकर फ्रेश होकर बाबा को याद कर सको नहीं तो क्या होगा नियम से उठ तो जाएंगे परंतु योग नहीं लगेगा नींद आती रहेंगी झुटके खाते रहेंगे तो ये ना हो बाबा कहते हैं नेमीनाथ नहीं बनना है जो भी करो प्यार से उमंग उल्लास से करो दृढ़ता से करो तो उससे क्या होगा सफलता जरूर होगी तो ये बुद्धि में रखना है सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इसलिए कोई भी बात मुश्किल नहीं हमारा ज्ञान है सहज ज्ञान सहज राज जो भी करते हैं समझ से करते हैं तो उससे क्या होगा समझ से करते हैं प्यार से करते हैं तो भारी नहीं लगता जो मजबूरी से करते हैं तो भारी हो जाता है इसलिए क्योंकि बहन जी ने कहा है नहीं करना है जो करना है प्यार से करना है कि बाबा के लिए हम करते हैं सेवा करो बाबा के लिए अपना भाग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ करो अपना भाग्य बनाने के लिए तो इसलिए यहां आप आए हो अपना पूरा पुरुषार्थ करके ऐसे बन के जाना कि जब घर जाओ कोई कहेगा कि ये तो फरिश्ता आया ठीक है ना फरिश्ता बन के जाना ओम शांति 2 मिनट बाबा की याद में बैठ
एक हाथ की थाली से हम दीदी का थैंक्स करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल अनुभवों से दीदी ने शक्ति भरी हमारे अंदर। बहुत बहुत थैंक्स।